Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Shuddhatmane Namah. Samyak Darshana Charana Guna Paya Kukarma Kipay Kevala Jnana Upaya Prabhu Vaye Bhajo Shivaray Jinavani Ke Jnanate Hota Tattva Shraddha Charana Dhari Kevala Lahe Paave
निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लब्धिसार ग्रंथ लिखा है, उसके आधार से हम यहाँ पंच लब्धि का प्रकरण देख रहे हैं। कल हमने सम्यक्त की प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति के पूर्व जो कोई बातें होती है उसकी पात्रता के संबंध में हम बातें देख रहे थे। उसके पहले प्रश्न है ना आपका, ये उपशम सम्यक्त क्षोपशम सम्यक्त दोबारा जरा लेना क्या होता है। देखो उपशम क्षोपशम और क्षय एक कर्मों की अवस्था है। ऐसी अवस्था होते हुए जहां जीव का जो सम्यक्त होता है तो उसको औपशमिक सम्यक्त क्षयोपशमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त कहने में आता है। सम्यक्त संबंधी कौन सी प्रकृतियां हैं, क्योंकि उसमें ज्ञानावरण आदि के क्षय क्षोपशम से कुछ बातें नहीं होती है, यहाँ सम्यक्त की बात चल रही है। तो सम्यक्त होने संबंधी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, तो एक तो दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्वादी प्रकृतियां और अनंतानुबंधी चार। अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी की प्रकृति होते हुए भी वो सम्यक्त में बाधक है, इसलिए उसका भी उदय रहेगा तो सम्यक्त नहीं पाया जाएगा। तो अभी हम अनंतानुबंधी चार और दर्शन मोह की तीन, इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है इसकी बात देखते हैं। जहां उदय है तो जाहिर है जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व का उदय है और अनंतानुबंधी का भी उदय है। तीनों ही उदय, ये दोनों ही प्रकृतियां, दोनों ही प्रकार की प्रकृतियां उदय रूप है तो वहां जीव मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि में हमने देखे कोई सादी मिथ्या दृष्टि है और कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है। जो सादी जो अनादि का मिथ्या दृष्टि है उसके मिथ्यात्व तो प्रकृति का बंध हर समय चल रहा है, उदय भी हर समय चलता है और अनंतानुबंधी का भी बंध उदय चलता है। जब हम अनंतानुबंधी का नाम लेते हैं, जहां जहां अनंतानुबंधी का उदय है वहां वहां चारों ही का उदय चलता है। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संगलन जो मेन है उसका नाम लिया जाता है, बाकी तीन है उसके साथ। अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहेगा तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संवलन तीनों का रहेगा, तब नाम हम अप्रत्याख्यानावरण का लेंगे क्योंकि तीन में वो मुख्य है। अब यहां हम अन्य तीन कषाय चौकड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, अनंतानुबंधी और दर्शन मोहिनी की ही बात चलेगी। तो जो अनादि का मिथ्या दृष्टि है उसके मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, अनंतानुबंधी का भी उदय चल रहा है, उसकी सत्ता में ये अन्य दो प्रकृतियां है ही नहीं। देखो ये दर्शन भूमि की तीन प्रकृतियां है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, वहां शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अनादि जो है उसके एकमात्र मिथ्यात्व प्रकृति है, ये दो प्रकृतियां उसके नहीं है। तो ये जो नीचे है ना, नीचे का अर्थ होता है यहाँ उदय रूप प्रकृति। जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसकी क्या पोजीशन है, उसने एक बार समय तो प्राप्त किया था, एक मिथ्या तो प्रकृति में से तीन प्रकृति बनी है और वो जब जीव फिर दोबारा मिथ्यात्व में आता है तो ये मिथ्यात्व का उदय है, ये नीचे वर्तमान समय बताया जाता है। और उसके अन्य दो प्रकृतियां सत्ता में पड़ी है, जब स्थिति पूरी होती है तो ये इस रूप से टर्न होकर उदय में आती है, जब मिथ्यात्व गुणस्थान चल रहा है तब। ये सादी मिथ्या दृष्टि की पोजीशन है, कौन सी, मिथ्यात्व का उदय है और अन्य दो प्रकृतियां सत्ता में है, और जब उनकी स्थिति पूरी होती है तब क्या होता है, मिथ्या तो रूप से टर्न हो होकर उदय में आती है, ये मिथ्या दृष्टि है। और यहाँ एक क्षोभ समय दृष्टि, यहाँ ये जो बातें इधर की बताई है वो क्षोभ समय दृष्टि। क्षोभ समय दृष्टि की पोजीशन क्या है, सम्यक प्रकृति का उदय है और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों सत्ता में है, और वो सम्यक प्रकृति रूप हो होकर उदय में आते हैं। ख्याल में आता है इतनी बात, मिथ्यात्व का उदय हो तो पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ये बीच वाली जो सम्यक मिथ्यात्व है इसका यदि उदय हो जाए और अन्य दो ऊपर रहे, ऊपर सत्ता में रहे, तो हम उसको कहेंगे वो सम्यक मिथ्यात्व है, मिश्र गुणस्थान है, तीसरा गुणस्थान है, उसकी भी सम्यक दृष्टि यानी सम्यक तो नहीं रहता, वो भी सम्यक तो से गिर जाता है। हम उसकी चर्चा छोड़कर हमें जो तीन प्रकार के सम्यक तो है, उपशम सम्यक तो में क्या पोजीशन है, ये तीनों ही उपशमित है, तीनों का ही उदय नहीं है। अब यहां अनंतानुबंधी को नहीं लिखा है, फिर भी अनंतानुबंधी का भी उपशम हुआ है, वो अन्य रूप से उदय में आता है, वो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान रूप से उदय में आता है, वो पड़ा है सत्ता में। जैसे हमने देखा था ना सर्वघाती है, वो देशघाती होकर उदय में आता है, ऐसे यहां पर अनंतानुबंधी का क्या होता है, वो अप्रत्याख्यान आवरण आदि रूप से उदय में आता है, टर्न होकर उदय में आते हैं, इसलिए उसका अपने रूप से फल नहीं मिलता, उसका उदय हो जाए तो सम्यक तो छूट जाए। यानी अभी जो उपशम सम्यक है उसमें ये सभी कर्म सत्ता में है, उदय में नहीं है। क्षोभम सम्यक में सम्यक प्रकृति का उदय है, अन्य दो दबे हुए हैं। और आपने क्षायिक की बात पूछी थी, क्षायिक सम्यक में क्या पोजीशन है, तीनों का ही और अनंतानुबंधी का भी, सबका पूरा क्षय हो चुका है, सत्ता में वे बिल्कुल नहीं है। अब वह जीव दोबारा मिथ्यात्व में आने का कोई चांस नहीं है, क्षायिक सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, ये तीन प्रकार के सम्यक्त। अब हमारा ये विषय जो है प्रथमोपशम सम्यक्त कौन से जीव को होता है उसकी बात चली है। कल हमने दो तीन पॉइंट्स देखे थे किसको हो सकता है, तो कौन से जीव, कौन से गति के जीव को हो सकता है, हाँ भाई आप बोले, कौन से गति का जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, बहुत अच्छा, चारों गति का जीव, मनुष्य तीयंच नरक और इनमें से, परंतु उसमें एक कंडीशन बताई थी, भव्य होना चाहिए, अभव्य जीवों में सम्यक तो प्राप्ति की योग्यता ही नहीं होती, वो अनादि से अनंत काल तक अभव्य अभव्य ही रहता है, ऐसे किसी कर्म के कारण वो अभव्य या भव्यपना नहीं कहा जाता। तीसरा पॉइंट हमने ना चारों गति वाला भव्य और कैसा मिथ्या दृष्टि, क्यों, क्योंकि प्रथमोपशम हम उसी को कहते हैं जो मिथ्यात्व तो गुणस्थान में से कर्मों का उपशम करके सम्यक तो प्राप्त करता है, इसलिए वहां कंडीशन क्या डाली, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। अन्य जो सम्यक तो है ना, कि जो क्षोभम सम्यक तो किसको होता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है या उपशम सम्यक तो को भी हो सकता है, उपशम में से क्षोभम हो सकता है, इसलिए यहां कंडीशन मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, ये बात बताई। और कौन सी कंडीशन देखी हमने, संगी पंचेंद्रिय होना आवश्यक है, देव तो संगी पंचेंद्रिय होते ही है, नारकी और मनुष्य भी संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, परंतु तिर्यंचों में एकेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक की बहुत वैरायटी है, उनमें से किसको होगा, तो संगी पंचेंद्रिय को ही होगा, क्योंकि सम्यक तो होता है तो मन के द्वारा निर्णय तक पहुंचने का जो कार्य है, तत्व निर्णय करने का कार्य, उपदेश को सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं और स्वयं को भासित होता है कि मैं भिन्न हूं, ये राग आदि भिन्न है, तो इसके लिए वहां मन के द्वारा जो विकल्पात्मक विचारात्मक भूमिका है उसके लिए संगी जीवों को ही सम्यक्त्व होगा। तो ये एकेंद्रिय आदि को क्या होगा, वो जीव मरकर जब संगी पर्याय में उत्पन्न हो गए तब उनके वो योग्यता हो सकती है। पर्याप्त होना आवश्यक है, क्योंकि अपर्याप्त काल में सम्यक तो नया उत्पन्न नहीं होता, पूर्व भव का हो तो चल जाएगा, अपर्याप्त नहीं, कैसे अपर्याप्त? जैसे स्वर्ग में से कोई सम्यक तो जीव है, मरकर मनुष्य में आया है, तो शुरू में जो अपर्याप्ति अवस्था होती है उसके पर्याप्त होने वाला होता है, परंतु जो उसकी बिगिनिंग के काल में भी उसको सम्यक्त्व बना रहता है, तो जो नया सम्यक्त्व प्राप्त करता है वो पर्याप्त जीव ही करेगा, अपर्याप्त नहीं। गर्भज की कंडीशन मनुष्य और तिर्यंचों की अपेक्षा से कही है। एक जन्म के भी तीन प्रकार होते हैं, पता है आपको? तीन प्रकार के जन्म होते हैं रमेश भाई, आपको पता है? एक तो होता है गर्भ जन्म, जो मनुष्य और तिर्यंचों में पाया जाता है। कल हमने एक नाम देखा था सम्मूर्छन जन्म। सम्मूर्छन जन्म में वहां माता पिता की वहां निमित्त नहीं बनता है, वो तो वातावरण में से ऐसे ही आसमंत से वो पुद्गल परमाणु का ग्रहण करके वहां शरीर की रचना होती है, उसको कहते हैं सम्मूर्छन। ये सारे वनस्पति है, द्विंद्रिय तीन्द्रिय आदि जो जीव है वो सारे सम्मूर्छन ही होते हैं। संगी पंचेंद्रिय जीव भी सम्मूर्छन होते, कौन से? तिर्यंच वाले। मनुष्य सम्मूर्छन होते हैं, परंतु वो कैसे होते हैं? वो लब्धि अपर्याप्त कहते हैं, जिनकी लाइफ स्पैन अत्यंत छोटी होती है, सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा होता है वो। अब ये जो जीव है गर्भज, देवों के कैसा जन्म होता है बहन नलिनी बहन? देवों के और नारकियों के जन्म को कौन सा जन्म कहते हैं? आपने सुना है, आपको याद नहीं आ रहा है?
आपको कोख में से उत्पन्न होते हैं और बड़े ही उत्पन्न होते हैं।
हाँ, उसको क्या कहते हैं? उपपाद, उपपाद जन्म। वहां उनकी शैया होती है, उपपाद शैया कही जाती है, जैसे वो शीप के आकार के होते हैं, शेल शेप, तो उसमें वो जवान ही उत्पन्न होते हैं। एक अंतर्मूर्त में पूरी रचना होती है उनके शरीर की। और नारकियों का भी कैसा है? उपपाद जन्म है। उनके भी जो वहां जन्म स्थान होते हैं, नरक के जो बिल होते हैं, उनके छत के जो मधु छत्ते जैसे होते, वैसे वहां उत्पन्न होने के स्थान होते हैं, जिसमें से वो कटते कटते ही नीचे गिरते हैं, भूमि पर गिरते हैं और फिर उछलते हैं, आदि जो कोई बात है, अभी अपना विषय वो नहीं है। तो वहां ये नारकियों का जन्म भी कैसा कहलाता है? उपपाद जन्म। इनमें से देव और नारकी उपपाद जन्म है कोई बात नहीं, उनके तो सम्यक तो होता है। सम्मूर्छन तिर्यंचों को पंचेंद्रियों को सम्यक तो हो सकता है, परंतु कल हमने देखा था कौन सा सम्यक तो हो सकता है? क्षोभशम सम्यक। कौन से जीवों को होगा? सादी मिथ्या दृष्टि को। अब यहां बात किसकी चल रही है? प्रथम ऑप्शन सम्यक की। तो तिर्यंचों में भी प्रथम ऑप्शन सम्यक तो होगा, प्रोवाइडेड वो गर्भज होना आवश्यक है। इतनी बात हमने कल देखी थी। अब आगे, इतनी बात हमने कल देखी थी ना, मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारी। जो तीव्र कषाय वाला जीव है उसको तो देखो, अभी हम क्रम से जो देखेंगे किस तरह से उसको होता है, तो उसके पहले में ये मंद कषाय वाला है तो उपदेश सुनने के लिए आएगा, आएगा ना उसको, ऐसे चलो देखो तो सही क्या चल रहा है, अभी उसने उपदेश भी नहीं सुना है, ऐसा जीव लेना है। परंतु उसको ऐसे अंदर से कुछ धर्मानुराग रूप प्रवृत्ति होती है, चलो मंदिर जाएंगे, चलो यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, क्या कहते जरा देखेंगे, या कोई कहता है तो उसको पर विचार करने जितनी बुद्धि होगी। परंतु हमने देखा कितने ही जीव ऐसे होते तीव्र कषाय जो हो गए, तो उनको ये बातें सुनकर भी चीड़ आती है। देखो जैसी जिसकी होनहार है उसकी बुद्धि भी वैसे होती है। ये सहज रूप से सारा जो पर्याय का क्रम निश्चित है ना, उस अनुसार उसके वैसे वैसे बुद्धि हो जाएगी। कोई हम जबरदस्ती करने से तो कोई सुनने वाला नहीं है। कभी कभी अपने बच्चों में कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, हम देखते हैं ना, तो किसी को बुद्धि होती है किसी को नहीं होती, क्यों नहीं होती? तो यहां जो कहना चाहते हैं, जो मंद कषाय ने, तीव्र कषाय नहीं है, बहुत पाप परिणाम नहीं है, जो विषयों में जो बहुत कुछ रचा पचा नहीं है, तो उसको ये बात सुनने के लिए तैयार है। इतनी बात है, अभी सुनी नहीं नहीं उसने तत्व, सुनने वाली बात देशना लब्धि में आएगी। तो यहाँ कहते मंद कषाय रूप विशुद्धता का धारी। जो विशुद्धि शब्द आता है ना, विशुद्धता या विशुद्धि, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ तो मंद कषाय है, तीव्र कषाय नहीं है, थोड़ा जिसको कहते हैं ना धर्म के प्रति अनुराग है, या पुण्य या भला जिसको हम कहते हैं, ऐसी प्रवृत्ति वाला जीव है। जागृत ये कंडीशन है। कोई कोई कहते ना कल रात को हमें नींद में समय दर्शन हुआ लगता है। हमें बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं, कितने फोन आते हैं और कितने क्या क्या पूछते रहते हैं। तो जागृत अवस्था में ही समय दर्शन होता है, सोते सोते सपने में समय दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि विचारों की जो चल रही है ना, विचार करते 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 ऐसी अवस्था होती है कि तो विकल्पात्मक छूट जाते हैं और आत्मा का अनुभव होता है। तो ये जागृत अवस्था में ही होता है। साकार ज्ञानोपयोगी जीव, क्या लिखा है? ज्ञानोपयोगी ने उपयोग कहाँ चल रहा है? ज्ञान में। हमने देखा था उपयोग, दर्शन उपयोग भी होता है और ज्ञान उपयोग भी होता है। यहाँ आत्मा का ज्ञान होना, सम्यक दर्शन होता है उसी समय क्या होता है? आत्मानुभूति होती है, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। दोनों का समय एक, सम्यक दर्शन का समय और अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होने का समय एक, यानी वो ज्ञान का कार्य है। ख्याल में आता है बेन? तो उसको साकार क्यों कहा? देखो, हमने ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग अपना यह विषय चला था। दर्शन उपयोग को क्या कहा था, याद है? सामान्य अवलोकन, उसी को कहते आकार। यानी विशेषताओं को जानना, वो है आकार। आकार यानी शेप, ऐसा अर्थ नहीं है। मुकेश भाई, हम कहते ना कौन सा आकार है, त्रिकोणीय के चौकोनी, उस आकार की बात नहीं है। वस्तु है, इतना ग्रहण हुआ, उसको हम कहेंगे दर्शन, उसको कहेंगे निराकार या अनाकार, उसको निर्विकल्प भी कहेंगे। विकल्प है भेद। अब ज्ञान क्या करता है? उनकी विशेषताओं को जानता है। विशेषताओं को जानना, इसी को कहते साकार या सविकल्प। सविकल्प है वो राग वाला विकल्प, वो नहीं लेना। ख्याल में ये शब्द है, थोड़े अटपटे है, परंतु कभी तो सुनने हैं ना अपने को। तो ये जो ज्ञान उपयोग होता है, तो उसमें विशेषताओं का, जैसे हम कहेंगे ये गुलाब का सुगंध है, तो हम कहेंगे ज्ञान सुगंधाकार हुआ। यानी सुगंध का शेप लिया क्या उसने? नहीं। सुगंध को जाना, इसको क्या कहते? सुगंधकार, सुगंधाकार हुआ। उसी को आप देखेंगे कहीं लिखा हुआ, ये गेयाकार हुआ। तो आकार का अर्थ शेप नहीं। सामने कोई चीज है और इसको हमने जानी, ये गेय है ना। ज्ञान जिसको जानता है उस वस्तु को गेय कहते हैं। ये गेय है और इसको जानने वाला हमारा ज्ञान है। तो ज्ञान ने इसको जाना, ये कहना है, तो हम कहेंगे ज्ञान गेयाकार हुआ। ये उपचार कथन है। तो हम कहेंगे ज्ञान तो ज्ञानमय ही रहा, वो कहां गेयाकार हुआ? गेय तो गेय में है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? ज्ञान ज्ञानाकार रहा। हमने मिट्टी का बैल बनाया, शेप दिया उसको, तो किस आकार का हुआ? बैल के आकार का। हम कहेंगे वो बैल के आकार का कहां हुआ? वो तो मिट्टी का ही आकार है, परंतु वो आकार कैसा है, किसके सदृश है? तो बैल के सदृश हुआ है, इसलिए हम कहेंगे वो बैल के आकार हुआ। ऐसे ज्ञान ज्ञान में ही रहता है, वो रॉ मटेरियल है ना। ज्ञान ने ज्ञान रूप रहकर वस्तु को जाना। हमने वो माइक को जाना, तो क्या ज्ञान, हमारे ज्ञान में जो माइक को जानने का कार्य हुआ है, वो माइक वहां स्पर्श रस गंध भरने वाला माइक वहां बना कि नहीं बना? तो ज्ञान ने जिसको जाना, वो ज्ञान वाला, वो ज्ञान में माइक है। ख्याल है ना? मिरर में जो प्रतिबिंब आता है, वो मिरर की अवस्था है। अग्नि का प्रतिबिंब होगा और हमने हाथ लगा के देखा तो कैसा है? वो ठंडा है। हाँ, अरे अग्नि तो गर्म होती है, परंतु वो मिरर है, मिरर इटसेल्फ है। इस तरह से ये बात होती है। अब ये साकार ज्ञानोपयोगी जीव, यानी एक ज्ञानोपयोग की अवस्था में सम्यक तो होता है, इतनी ही बात यहाँ समझनी है। बाकी हमने बहुत लंबी चर्चा की है, परंतु शास्त्र में जब आप पढ़ेंगे तो ये शब्द आते हैं, इसलिए उसकी चर्चा की। अब ये तो कंडीशंस किसको होता है उसको देखा है, अब सम्यक तो होता है तो क्या होता है, तो कहते पांच लब्धि पूर्वक, यानी क्रम से ये पांच लब्धि होगी और उसके पश्चात अनिवृत्तिकरण लब्धि के अनिवृत्तिकरण के अनंतर। ये करण लब्धि कौन सी लब्धि कितने नंबर की है?
पांच।
पहली चार लब्धियां कौन कौन सी है? अक्षोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। तो करण लब्धि में तीन भेद है उसके, करण लब्धि के तीन नाम है उसमें, कौन कौन से है? नहीं, पहला कौन सा? अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। करण यानी वहां परिणाम विशिष्ट होते हैं, तो ये जो अनिवृत्तिकरण होता है उसके बाद में, यानी पांच लब्धि पूर्ण होने के पश्चात अनंतर यानी इमीडिएट नेक्स्ट समय में प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है। ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसे होता है? किसे होता है बोलो, जितना आपको याद है बोलो। कौन से गति वाले का होता है?
चारों
गति वाले का। आप बोलो आगे, भव्य को होगा, मिथ्या दृष्टि को होगा, पर्याप्त गर्भज और संगी पंचेंद्रिय होना आवश्यक है। फिर तीव्र कषाय वाले को नहीं होगा, मंद कषाय रूप विशुद्धता वाले को होगा, जागृत अवस्था आपने बताई और साकार ज्ञान उपयोग वाले को होगी। बहुत सारी हमने कंडीशंस देखी ना, तो और कब होगी सम्यक तो कब होगा? ऐसा नहीं कहा कि 8:10 में होगा। हाँ, तो पांच लब्धि पूर्वक होगा, जो अंतिम जो करण लब्धि है, करण लब्धि में भी अंतिम जो अनिवृत्ति करण वाला जो परिणाम है उसके पश्चात वहां प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो ये कैसे होती है, ये पांच लब्धि क्या है, वो अभी हम देखेंगे। इसकी जो चर्चा है फिर भी पढ़ लेते हैं, अभी हमने इसकी चर्चा तो की थी, हम अभी पुस्तक में से पढ़ेंगे। देखो 60 नंबर है आपके, उसमें 57 है, कौन सा नंबर है? ये जो अभी हमने कंडीशंस देखी उसके नीचे, अब इनमें जो बातें पात्रता के रूप में बताई है उन पर चर्चा करते हैं। ये सब हमने अभी चर्चा की है, फिर यहां से पढ़ेंगे तो हमारा पक्का हो जाएगा। मनुष्य, तिर्यंच, देव और नारकी, इन चारों ही गति वाले मिथ्या दृष्टि जीवों को प्रथम ऑप्शन सम्यक्त तो हो सकता है, परंतु भव्य जीवों को ही होगा, अभव्य जीवों को नहीं। तुम कहोगे ऐसा अन्याय क्यों? हमें लगता है ना ऐसी पार्शियलिटी क्यों, ऐसा अन्याय क्यों? उनके कौन से कर्म के कारण वे अभव्य है? देखो ये बात एम्फोसिस करने के लिए ये प्रश्न, अब ये तो पत्र रूप लिखा है तो उनके मुंह में डाल दिया है। इसका समाधान इस प्रकार है कि भव्यत्व और अभव्यत्व किसी कर्म के कारण नहीं होता, उसे जीव का पारिणामिक भाव कहा है। आपने अभी औपशमिक, शायिक, क्षौपशमिक नाम सुने हैं, और भी कोई ऐसे भाव होते हैं? औदयिक, जहाँ कर्म के उदय के कारण होते हैं उसको औदयिक कहते हैं, और जहां कर्म का कोई निमित्त नहीं बनता है वहां पारिणामिक कहते हैं। ये पारिणामिक भाव है, इसमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। वैसी ही सहज योग्यता उन जीवों में अनादि की पाई जाती है। अभव्य जीव तीन काल में कभी सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकते, उनके प्रायोगिक लब्धि तक चार लब्धि तो हो सकती है, क्या कहा? उनमें भी क्षोपम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि और प्रायोगिक लब्धि। प्रायोगिक लब्धि तक जब हम आएंगे तो पता चलेगा कर्मों की कितनी कितनी उथल पुथल हो जाती है, उनमें भी कितनी प्रकृतियों का बंध रुकता है, परंतु मिथ्यात्व का बंध नहीं रुकता है। बहुत सारे इतने तक जाके फिर भी आगे का करण लब्धि वाला पुरुषार्थ वह जीव नहीं करता, ऐसा नहीं कि वो बिचारा है नहीं कर सकता, उसके वैसे भाव वैसे परिणाम उसके होते ही नहीं। जिसको कहते ना कि आत्मस्थिरता रूप, आत्मा को जानते रहना या आत्मा के विचारों में डूबकर आत्मानुभूति होना, ये आगे वाला कार्य उसका नहीं होता। परंतु करण लब्धि नहीं होगी और सम्यक्त्व भी कभी नहीं होगा। भव्य जीवों में पात्रता तो होती है, उनमें भी काल लब्धि आने पर, देखो क्या क्या कहा हमने, पांच समवाय के नाम सुने हैं। देखो कोई भी कार्य, कार्य ने पर्याय होती है, तब उसमें अनेक कारण होते हैं। एक तो सबसे महत्व का कारण है द्रव्य की अपनी निज शक्ति, स्वभाव कहेंगे, ये पहले चार समवाय सारे जीव उस द्रव्य में ही हो गए। तो हमें तो ऐसा लगता है कि नहीं, वो निमित्त आए ना तभी कार्य हुआ, क्योंकि वो जो निज शक्ति है प्रत्येक द्रव्य की, वो बाहर से दिखाई नहीं देती है। कार्य तो दिखाई देता है, और क्या दिखाई देता है, निमित्त भी ख्याल में आता है, परंतु ये द्रव्य की शक्ति से कार्य हो रहा है ये बात ख्याल में नहीं आती है। इसलिए ऐसा ही लगता है, देखो वो नहीं होता तो ये कार्य कैसे होता। तो हमें नियामक कंट्रोलिंग कारण कौन लगता है कि निमित्त कारण, वो यदि नहीं करता तो क्या होता, डॉक्टर ये नहीं बचाते तो वो पेशेंट कैसे बचता, ऐसे विचार सहज रूप से आते हैं, क्योंकि हमें तत्व की दृष्टि से वस्तु की यानी द्रव्यों की ओर देखने की वो मालूम ही नहीं है। कैसे वो हो सकता है ये बात पता नहीं होने से सहज रूप से ऐसे लगता है ये शक्ति थी तो निमित्त के बिना क्यों नहीं हुआ, ऐसे लगता है ना, तो निमित्त ने ही कार्य कराया, ऐसे सहज वो प्रवृत्ति देखने में आती है। अब यहां क्या हो रही है बात, पांच समवाय में कौन कौन है, एक तो स्वभाव यानी वह पर्याय किस द्रव्य में होगी, उस द्रव्य में वो स्वभाव त्रिकाल पड़ा है उसको कहेंगे स्वभाव। पुरुषार्थ यानी उस द्रव्य के अपने बल से वो पर्याय प्रकट होगी, कोई अन्य द्रव्य उस पर्याय को प्रकट करे ये नहीं हो सकता। टीचर जो है वो तो समझाने का उसमें राग है, और जो भाषा वर्गना है उसमें उपदेश रूप वो ध्वनि वगैरह वो सब निकलती है, और शिष्य अपनी योग्यता से समझता है, वो उसकी निज शक्ति है। तो ये जो समझने रूप कार्य हुआ है ज्ञान के पर्याय में, उसमें जीव का पुरुषार्थ लगा है, उस शिष्य का पुरुषार्थ लगा है। तो स्वभाव पुरुषार्थ काल लब्धि ने जिस क्रम से वो पर्याय होने वाली है उसी क्रम पर उसी स्थान पर होगी, उसको कहेंगे उसका काल। और होनहार जो पर्याय होनी है वही होगी, अन्य नहीं होगी। ये सब कुछ वो द्रव्य, द्रव्य इतना चमत्कारिक अद्भुत वस्तु है, उसमें वो तीन काल की पर्यायों की करने की क्षमता भी है, उसका पुरुषार्थ काल लब्धि सब कुछ निश्चित है, वो द्रव्य में ही पूरा पड़ा हुआ है। तो हमने देखा स्वभाव पुरुषार्थ काल लब्धि होनहार और निमित्त, निमित्त भी वही होगा जो उस पर्याय में सहज रूप से होने वाला है। हम विशिष्ट निमित्त नहीं ला सकते हैं, ना उसको अवॉइड कर सकते हैं, नहीं जुटा सकते, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अन्य द्रव्य की पर्याय है, वो सहज अपने काल में होती है। उस दिन बात आई ना, यहाँ घड़ा बनने का कार्य होने वाला है या हो रहा है, उस समय उस विशिष्ट कुंभार को वो बनाने का विकल्प आया, वो उसका कार्य उसमें हुआ, और हमें ये मिट्टी के निजे स्वभाव की वो पता नहीं है, वो मिट्टी स्वयं अपने पुरुषार्थ से घड़े रूप हो रही है। आप क्या कहते हो, अजीव को भी मिट्टी को भी पुरुषार्थ होता है क्या, हमने तो अभी तक जीवों का ही पुरुषार्थ देखा था। तो कार्य कौन कौन से द्रव्य में होता है मनीष भाई,
उत्कल और जीव में,
दो ही द्रव्य में होता है। आप क्या कहते बिना बेन, छह द्रव्य में, क्यों सामान्य गुण है, कौन कौन सा, वस्तुत्व गुण है तो अपना अपना कार्य करता है, और द्रव्यत्व गुण क्या होता है, वो निरंतर चल रहा है हर समय भाई, है ना, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व, कौन से द्रव्य में, सभी द्रव्य में। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय करता है, तो वहां उसका अपना अपना पुरुषार्थ चलता है। क्योंकि हम बच्चे थे ना तो हमने सीखा था, कोई वीर्य गुण जीव द्रव्य में है और वो पुरुषार्थ करता है, अभी हम बड़े हो गए तो हमने ये पांच समवाय के नाम सीख लिए। तो ये स्वभाव है, पुरुषार्थ है, काल लब्धि है, होनहार है, और उस समय उस कार्य के लिए जो कोई उचित निमित्त है, जो वो निमित्त जो है ना, वो अन्य द्रव्य की पर्याय है। अब वो पर्याय भी अपने समय पर उत्पन्न होगी। हमने मान लो कोई द्रव्य वहां लाके रखा, तो उसकी वो पर्याय उस समय होनी तो उसके अपने से होगी, हमारे कहने से थोड़ी होने वाली है। तो ये सब कुछ निश्चित हो जाता है तो हमें लगता है, अरे फिर हमारा करना धरना क्या रहा, हम इतने सारे पुरुषार्थ जीव है, हमारा क्या होगा। हम सोचे कुछ और होगा, कुछ और, कुछ और नहीं होगा। जीव द्रव्य में आप स्वयं जीव द्रव्य हो, और आपकी जो पर्याय निश्चित है उसके अनुसार वो जीव द्रव्य स्वयं उस रूप परिणमेगा। हमने अपने को मनुष्य माना है और हमने इच्छा की, वैसा नहीं होता तो हमें लगता है हमारा पुरुषार्थ कहाँ चला गया। इसके लिए हमें उसके पारिभाषिक शब्द के अर्थ, लौकिक भाषा अलग होती है और यहाँ जो तत्व की भाषा है उसको उसी के अर्थ में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमको सीखना है। मनुष्य रूप हमारे जो कोई कर्तव्य है, जो कोई कार्य है, वो तो होते रहेंगे। हमें तो ये इस भाषा को सीखकर तत्व का निर्णय, तत्व की दृष्टि रखनी है। अब यहाँ ये वाक्य अभी हम पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ख्याल में आएगा। देखो, भव्य जीवों को सम्यक्त्व की योग्यता है, ये हमने पहले निश्चित किया। उनमें भी यानी भव्य जीवों में भी काल लब्धि आने पर, काल लब्धि यानी जिस जीव के पर्याय के क्रम में जिस समय सम्यक्त होना है, उस काल लब्धि आने पर, कल हमने देखा था जिसको सम्यक दर्शन होता है, वीना बेन का प्रश्न था, तो उस अभी सम्यक्त होना हो गया है, मान लेते यहां ये मोक्ष का पॉइंट है और उसके पहले ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है। यहां किसी जीव को यहां सम्यक दर्शन हुआ तो इसके आगे और अधिक काल नहीं होगा उसको मोक्ष पाने के लिए। लॉन्गेस्ट पीरियड कितना लगेगा उसको, मैक्सिमम टाइम अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो यहां मोक्ष है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन पहले ही किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है, उसके पहले होगा कि नहीं किसी को। वो भव्य भी है, सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण में भी है, उपदेश भी सुन रहा है, उसकी प्रायोग लब्धि भी हुई है, परंतु यहां उसको करण लब्धि भी नहीं होगी और सम्यक तो भी नहीं होगा। अर्लिएस्ट कब होगा? होगा तो कब होगा अर्लिएस्ट? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पहले। जरूरी नहीं सबको अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पहले सम्यक तो होता और इतने काल के बाद मोक्ष होता है। हो सकता है अनादि का मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसी भाव में मोक्ष भी चला गया। लॉन्गेस्ट कितना पीरियड हो सकता है? अर्ध पुद्गल परावर्तन, कि किसी को एक पूरा पुद्गल परावर्तन काल बाकी है, उसको सम्यक तो होगा कि नहीं होगा? नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहा? काल लब्धि आने पर। अब ये काल लब्धि हरेक जीव की हरेक में अपनी अपनी अलग अलग होगी, तो वो निश्चित है उसका सम्यक दर्शन प्राप्त करने का समय, ये पर्यायों का क्रम निश्चित है, तभी होगी। आप कहेंगे भगवान ने हमारा सम्यक दर्शन देखा है, अब ये 2007 साल में अगस्त महीने में, आज कौन सी 5 तारीख को, और 10 बजे अभी हो गए ना, 10:05, हम कहेंगे 10:15 बजे हमारा सम्यक तो उन्होंने देखा है, तो अभी क्या करेंगे? चलो जरा घूमने चले जाएंगे। उन्होंने देखा है ना तो होगा ही। यदि उन्होंने देखा है तो उसके पहले उन्होंने 5 लब्धि भी देखी है, और 5 लब्धि देखी है तो वहां कैसे जीवों के परिणाम होते हैं वो भी देखा है। यानी हम केवल टाइम की ओर देखते हैं, इस समय होना है, चलो फिर अभी क्या करना है, अभी तो हम अन्य कुछ करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये भगवान ने उसको ऐसे कोई टाइम, यानी कोई घड़ी की टाइम नहीं देखी उन्होंने, इस जीव के पर्यायों में अमुक पर्याय के बाद ये देखी है तो उसके पूर्व की पर्याय भी देखी कि नहीं देखी है, ये सब कुछ निश्चित है, उन्होंने देख ली है। अब हम कहते कि काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार, भवितव्य ने जो होने योग्य पर्याय है उसको भवितव्य कहेंगे, होनहार, उसके अनुसार पुरुषार्थ से सम्यक तो प्राप्त होता है। किससे होता है? होगा तो पुरुषार्थ से ही होगा। क्यों? देखो, काल लब्धि तो कोई हम चेंज नहीं कर सकते, जब होना है तभी होगा। भवितव्य जो पर्याय होनी है तो वही होगी, स्वभाव तो अनादि से ही पड़ा है, उसमें क्या करना है? तो अभी क्या करना, राजीव के हाथ में क्या रहा, पुरुषार्थ। आप कहेंगे वो भी जब होगा तभी होगा, बात सही है, फिर भी हम उपदेश किसका, शास्त्र में उपदेश किसका दिया जाएगा, पुरुषार्थ। कोई कहेगा हमारा हाँ इस समय होना है ना, चलो अभी हमें कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है, होगा तो उस योग्य पुरुषार्थ से होगा। हमने क्या देखा, प्रत्येक पर्याय में पुरुषार्थ लगता है, तो कोई जीव नरक में चला जाता है, नरक के योग्य उसके भाव होते हैं, मिथ्यात्व का कार्य चल रहा है, वो किससे हो रहा है, वो भी पुरुषार्थ से। कौन सा पुरुषार्थ, मिथ्यात्व का पुरुषार्थ, नरक के योग्य पुरुषार्थ, और सम्यक्त होगा तो सम्यक्त्व के योग्य पुरुषार्थ। पुरुषार्थ बिना एक समय भी नहीं जाता है जीव का, किस योग्य पुरुषार्थ हो रहा है, उस पर्याय के योग्य पुरुषार्थ हर समय चल रहा है। हम यहां सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो पुरुषार्थ किस योग्य होगा, उसका उस सम्यक्त्व के योग्य पुरुषार्थ उसका होगा ही, तभी उसको सम्यक्त्व होगा, बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा। तो ये पुरुषार्थ करना है ना, क्या करना, कुछ वजन उठाना है, क्योंकि हमें पुरुषार्थ का अर्थ ही पता नहीं है। तो सम्यक दर्शन रूप पर्याय उत्पन्न होना, स्वभाव रूप रचना होना, यही पुरुषार्थ है। तो ये कैसे होता है क्या देखेंगे अभी। तो यहाँ ये पांच समवाय जिसको कहते हैं, उसमें से भव्य को ही होगा, काल लब्धि आने पर होगा, भवितव्य के अनुसार होगा, और पुरुषार्थ करने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। हाँ,
तो इन पांच कारणों में कोई एक कारण कभी मुख्य होता है या पांचों कारण बराबर ही होते हैं?
हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है, इन पांच कारणों में कोई मुख्य होता है कि सभी कारण बराबर होते हैं? देखिए, कारण तो सभी इक्वल होते हैं, जो होने योग्य होते हैं, उसका कथन में मुख्य और गुण हो सकता है, कथन में, कहने में। हमारे पांच पुत्र है तो हम किसी का एक का नाम पहले लेंगे ना, भले पहले दूसरे से ले ले, आखिर से गिनाओ, या एट रैंडम किसी का भी कहें, तो किसी को एक मुख्य करके हम कह सकते हैं, ख्याल है ना। यहां भी कारणों की चर्चा करते हुए जिसकी मुख्यता से कार्य हम कहेंगे, मुख्य करके उसको कहेंगे, परंतु वहां भी मुख्य गौण का अर्थ क्या है, गौण रूप से अन्य चार वहां वही पर विद्यमान है, उनकी हम बात नहीं कर रहे। कभी कभी हम निमित्त की मुख्यता से भी बात करेंगे, पांच है ना कारण, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार, ये तो एक द्रव्य में हुए, निमित्त तो परद्रव्य है, उसकी भी मुख्यता से बात कर सकते हम, क्योंकि हमने उसको मुख्य करके, मुख्य किसको करना है, दैट डिपेंड्स ऑन, वो तो उपदेश दे रहा है उसके अनुसार है। तो इन चारों को गौण करके मुख्यता किसको करिए, निमित्त की, क्या कहेंगे, सच्चे देव गुरु शास्त्र के उपदेश के बिना नहीं हो सकता। अरे तो ये क्या हुआ, पुरुषार्थ से होगा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु से होगा? हम पूछते हैं, सम्यक दर्शन होना है, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र से होगा कि नहीं होगा? तो सच्चे देव गुरु शास्त्र से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बात सही है ना, उनसे भी नहीं होगा। तो कहां से होगा, तो जीव ही स्वयं उस रूप परिणमित होगा, होगा तो जीव से ही, अपने से होगा, परंतु वो निमित्त से। तो जब हम निमित्तों की चर्चा कर रहे हैं तो उनको मुख्य करके कहेंगे, परंतु वो निमित्त आया इसलिए हुआ ऐसा नहीं है। देखिए, आपको महावीर भगवान की बात पता है, जब आदिनाथ के काल में महावीर का जीव मारीची के पर्याय में था,
ये मेरा दूसरा प्रश्न था,
तो उत्कृष्ट वहां जिसको हम निमित्त कहते हैं, देखो उनको निमित्त कहेंगे ही नहीं आदिनाथ को, क्यों निमित्त कब कहेंगे, कार्य होगा तो निमित्त कहेंगे, कार्य के अनुकूल है उसको निमित्त कहेंगे। उनका कार्य क्या हुआ, मिथ्या तो रूप परिणमन हुआ, तो उसमें थोड़े हम महावीर भगवान निमित्त कहेंगे, आदिनाथ भगवान को निमित्त कहेंगे, ख्याल है ना। तो उसके योग्य जो कोई वहां चलेगा उनको तो निगेटिव रूप से हम कहेंगे, उनको तो उपदेश सुनकर गुस्सा आया, तो क्या गुस्सा में भी तीर्थंकर निमित्त होते हैं ना, ऐसा कहेंगे हम? ख्याल है ना। हम भी देखते हैं ना, कभी हम बच्चों को अच्छा सा उपदेश देते हैं उनके भलाई का, और उनको गुस्सा आता है,
उनको गुस्सा आया कि प्रमाद हुआ, उन्होंने आनंद माना उसमें,
आनंद कहाँ माना है उनको ऐसा, अभी उनके थोड़े ही हम डायलॉग हमें को पता है, हम क्या कहेंगे, आदिनाथ की वाणी में क्या आया था, किसी के मन में प्रश्न आया कि यहाँ कोई ऐसा जीव है कि जो भावी तीर्थंकर है, हाँ, तो क्या आया, ये तो अंतिम तीर्थंकर होगा, 24वां तीर्थंकर। तो वो तो इतने इंटेलिजेंट थे, कितना काल था पहले और 24 के बीच में बताओ, बहुत नहीं चलेगा। एक कोड़ा कोड़ी सागर, कोई जीव त्रस पर्याय में, कोड़ा कोड़ी है ना, एक करोड़ गुना एक करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर, एक के ऊपर कितने जीरो आते हैं, 14। इतने सागर, एक एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, और एक एक पल्ले में वो बड़ा खड्डा करो, रोम खंडों से भरो, 100 साल के बाद एक खंड निकालो, तो कितना बड़ा काल होगा। और कोई भी जीव त्रस पर्याय में बारंबार जन्म मरण करे, मान लेते द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के भी भव मिले, तो भी कितने, 2000 सागर, 2000 केवल। उसके बाद कहाँ जाएगा, एकेंद्रिय में, निगोद में जाएगा। कितने काल तक वह जीव निगोद और एकेंद्रिय में भटका होगा, कौन सा जीव, जो तीर्थंकर होने वाला जीव है। बीच में वो त्रिपुष्टि नारायण भी हुए थे श्रेयांशनाथ तीर्थंकर के काल में, तो उनको ये पता चला इतना लंबा काल है, नहीं मुझे तो ये मिथ्या, तो क्योंकि इतना लंबा काल है ना, तो सम्यक तो चलता रहे, और ये तो हो ही नहीं, सम्यक मैं दूसरा तीर्थंकर होके दिखाऊंगा। मानो क्या, गुस्सा आया कि नहीं आया, अरे आदिनाथ भगवान का मैं पोता हूँ, भरत चक्रवर्ती मेरे पिता है, शाही समय दृष्टि है, और मैं इतने काल तक रखूंगा, नहीं मैं अभी का अभी होके दिखाऊंगा। अभी उनके जो कोई डायलॉग हो गए वो हो गए, परंतु वो तो वहां तो पाखंड मतों की स्थापना कर दी ना उन्होंने, तो अभी कौन सा पुरुषार्थ किया उन्होंने, मिथ्या टोका हुआ। क्या हम उसको कहेंगे आदिनाथ भगवान के कारण उनका हुआ, तो इस तरह से जो जो कार्य होता है अपने से होता है। अब बहुत सारी बातें होती है, हम किसी विशिष्ट को निमित्त क्यों बनाते, आपने देखा अभी बच्चे आजकल टीवी देखते हैं, तो जो कोई चोरी की प्रवृत्ति वाला है उसमें से, अरे ये ऐसा चोरी करता है, अभी टीवी देख देख कर खून करने वाले भी बच्चे इतने हैं सारे, तो उसी को क्यों मुख्य उसी को क्यों ग्रहण करते है? वहां तो बहुत सारी बातें हैं, कोई दूसरे को एक दूसरे को मदद करने वाले भी बातें दिखाते कि नहीं दिखाते, तो उसी को क्यों, क्योंकि उसने उसके जो परिणाम हुए उसने उसको निमित्त बनाया, अन्य उपदेश क्यों नहीं ग्रहण किया। हम भी देखते ना बहुत सारे उपदेश मिल रहे अभी आज, इतना मीडिया है, इतना सब है, तो विशिष्ट क्यों, हम क्यों उसको निमित्त, हम स्वयं उस रूप परिणमते हैं तो हम उस चीज को निमित्त बना लेते, तो जैसी जिसकी योग्यता है वैसे वहां सामने निमित्त उसको कहने में आता है, कार्य हुआ ही नहीं तो उसको निमित्त भी नहीं कहेंगे। अभी ये निमित्त उपादान की चर्चा गए साल बहुत हुई थी अपनी यहाँ, हाँ। अब हम आगे देखते, देखो फिर पढ़ते, भव्य जीवों में पात्रता तो होती है, उनमें भी काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार पुरुषार्थ से सम्यक्त्व प्राप्त होगा। ये तो चार समवाय आए, अभी निमित्त रह गया ना बाकी, उसमें देशनारूप निमित्त भी होगा, यानी वो अवश्य होगा ही। वो देशना किसको कहेंगे, ज्ञानी के उपदेश को, वो भी उसके यथायोग्य। हम कहेंगे हमें ज्ञानी चाहिए, तो हम मरकर कहाँ जन्म लेना चाहते हैं उषाबेन, विदेह क्षेत्र में सीमंदर भगवान के पास, अन्य 19 तीर्थंकर नहीं चलेंगे बेन आपको, एक ही है क्या, जुगमंदर नहीं है, 20 के 20 एट ए टाइम विद्यमान है, वो विद्यमान तीर्थंकर है। देखो हमारे यहाँ जो 24 हो गए ना, एक के बाद एक हुए थे, और वहां जो अभी सीमंदर जुगमंदर बाहु सुभा वो सब संजातक वगैरह है, वो 20 एट ए टाइम 20 जगह विद्यमान है, सब जगह उनका समोचरण वगैरह चल रहा है, सबका उपदेश हो रहा है, दिव्य ध्वनि खिल रही है। बोलो आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो हमारे सीमंदर है ना फेवरेट, अरे हमारे तो उनके प्रति हम हो भाव है, हमारे तो भगवान है हुआ, परंतु ये अभिप्राय में पढ़ा है ना आपने, क्या हमको सीमंदर के यानी कि कहाँ जन्म लेना है, विदेह क्षेत्र में, मालूम है विदेह क्षेत्र कितने हैं, सब जगह तो अभी तीर्थंकर नहीं, भले अरण्य अरिहंत हो गए, अब वो भी आर्य खंड में होते हैं, वहां भी पांच म्लेच्छ खंड होते हैं प्रत्येक विदेह में। मान लेते म्लेच्छ खंड में जन्म होगा तो, जैसे अब यहाँ इथियोपिया में अपना जन्म हुआ तो क्या करेंगे? ये जैनिज्म का उपदेश मिला कि उधर मिलेगा? क्योंकि हमने कुछ ऐसा सुन रखा है ना, हम बचपन में भी ऐसे सुनते थे, हमारे घर में हमारी नानी वगैरह बोलती थी क्या करेंगे, या तो विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे, या दूसरा ऑप्शन क्या है, अब पुण्य करेंगे स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? फिर तो किसी भी भगवान के कल्याणक में, वहां पंच कल्याणकों में, समोसरण में जा सकते हैं। अच्छा जाएंगे? हंसते हो। हम कहते हैं हमारे यहाँ थोड़ी सी अनुकूलता है, थोड़ा धंधा पानी है, उसको छोड़कर स्वाध्याय में नहीं आते। स्वर्गों की इतनी अनुकूलता छोड़कर भगवान के पास जाएंगे? किसको? उपदेश सुनने को। क्यों रमेश भाई? क्योंकि स्वर्गों में तो इतनी अनुकूलता है, इतना वैभव है, इतने भोग सामग्री है, और वहां उसको भोगने की इच्छा भी है उन जीवों को, तो उनको छोड़कर कौन जाएंगे? जिनके सच्ची वितरागता का प्रति प्रेम है, जो धर्मानुराग रूप है, मंद कषाय रूप है, वही जाएंगे ना? सब थोड़े ही जाएंगे वहां पर। तो ये तो सर हम सुनते आए बचपन में। अब देशना रूप निमित्त भी होगा तो ज्ञानी की देशना तो मिलेगी ही, नॉट कोई पर्टिकुलर। अभी उस जीव के सम्यक्त्व में जो कोई कार्य कार्य होगा, वो निमित्त उसको सहज रूप से मिलेगा। हम क्या चाहते हैं? नहीं, हमको वही ज्ञानी चाहिए। अरे वो ज्ञानी तो अभी स्वर्ग में बैठे हैं। नहीं तो हम फिर वो गाना गाते, उनको भक्ति से बुलाते, आप आओ और हमको तार दो। भले कोई श्रीमद जी हो या अन्य कोई हो, हमको तो स्वामी जी हो, कोई भी, आप आना और हमें तार देना। और वो निमित्त आपको कहां, आपको मरकर वहां जाना पड़ेगा? आप यहीं रहना चाहते, वो तो अभी सागरों में तो वहां रहेंगे, वो तो थोड़े आने वाले, सम्यक दृष्टि होकर चले गए। क्या अन्य कोई सम्यक दृष्टि चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, उनके प्रति हमें बहुत आदर है। अरे परंतु अपना कार्य तो क्या है ना, ये अपना अभिप्राय में कहां क्या चल रहा है, इसको हम ही को टटोलना है, और कोई आके अपना कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। तो देशना रूप निमित्त होगा। देखो हम देखते हैं सहज रूप से किसी को वो मार्ग मिल जाता है, उपदेश मिलता है। कभी कभी हम ट्रेन में बैठे बैठे अन्य मति कोई बाजू में बैठता है, ना कोई जान पहचान, और सहज ऐसे कोई चर्चा छिड़ जाती कि कितनी गहरी फिर चर्चा हो जाती। मेरे तो डिस्पेंसरी में तो मोहम्मेडन पारसी तक आते थे, क्या कर रहे हो? ये कर रहे, पुस्तक पढ़ रहे, क्या लिख रहे, चलो हमको भी दे दो। यानी जिसको कहते सहज रूप से, एक मोहम्मेडन ये मैकेनिक गाड़ी दुरुस्त करने वाला, एक छोटा सा उसके ऐसे बॉक्स था मेरे सामने, डिस्पेंसरी में कोई पेशेंट नहीं था, आके बैठता था, डॉक्टर साहब आप क्या पढ़ते हैं? मोहम्मेडन कितने चुस्त होते मालूम है, फिर भी उसको इतनी जिज्ञासा थी कि आधे आधे घंटे तक चर्चा करता, हमको भी समझाओ ना आप क्या पढ़ते। ये सहज रूप से उपदेश प्राप्त होता है किसी को। कभी कभी बैठे बैठे कोई पुस्तक हाथ में आती, अरे ये क्या है, अपने तो कभी पता ही नहीं था ऐसा। कोई कहे अन्य प्रयोजन वश कहीं जाते हैं और उपदेश सुनने को मिलता है, ऐसा भी होता है कि नहीं होता?
बहुत होता है।
तो ये कहते हैं कि देशना रूप निमित्त भी होगा।
बहन जी, तेरी अंश को देशना लब्धि निमित्त होता है?
हाँ होता है।
तो वो ऐसे आपने बताया था जिन भीम का दर्शन भी हो सकता है?
हाँ, वो बाह्य निमित्त में आएगा। अभी जब देशना लब्धि का प्रकरण आएगा ना, उसमें ये सारी चर्चा होगी। क्योंकि हमने क्या देखा, चारों गति के जीवों को प्रथमोपशम सम्यक्त होता है, और प्रथमोपशम सम्यक्त में देशना का निमित्त होता ही है। अब वेदक सम्यक्त में अन्य कोई कोई निमित्त है उसकी बात हम मत भी देखेंगे, परंतु यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त की बात चल रही है। बिना देशना के प्रथमोपशम सम्यक्त होगा ही नहीं। अब ये देशना तो तीन बहुत संगी पना जब अगर चलता रहे, लगातार संगी में जन्म ले, तो पहले तीन भव तक की देशना उसको काम कर सकती है। तो हमें तो उस भव में तो कोई देशना देने वाला नहीं लगता है, फिर भी वो देशना का रूप जो निमित्त मिला है वो किस तरह से काम करता है, वो सब आएगी क्रम से बात। अब कुछ कह रहे थे? हाँ, देखो, जो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष जाएंगे उनके सर्वप्रथम सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता होती है, उसके पहले कभी नहीं हो सकता। मान लेते अर्ध पुद्गल परावर्तन से लंबा काल अगर बाकी है तो उस समय वो नहीं नहीं मैं पुरुषार्थ करूंगा और प्राप्त करूंगा, अरे हो ही नहीं सकता है। भगवान ने ऐसा देखा ही नहीं इतने पहले किसी को होते हुए। जिन्हें उससे अधिक काल बाद मोक्ष होगा या जिन्हें अनंतानंत काल पश्चात भी मोक्ष नहीं होने वाला, ऐसे दूरानुदूर भव्य, उसको कहते दूरानुदूर भव्य, उनका मोक्ष अत्यंत दूर है, लंबा है। अकेले अर्धपुद्गल परावर्तन काल नहीं, अनंतानंत काल बाद होने वाला है, उसको भी सम्यक तो अभी नहीं होगा, जब होना है तभी होगा। हमने कारण कार्य रहस्य पुस्तक में पांच समवायों की चर्चा की थी। सम्यक तो प्राप्ति में भी पांचों समवाय होगे ही। अभी हमने देखे ना उनके नाम, मात्र काल लब्धि आई है इसलिए पुरुषार्थ बिना ही सम्यक तो प्रकट होगा यह बात संभव नहीं है। होगा तो पुरुषार्थ से ही होगा, तो हम पुरुषार्थ करेंगे नहीं, काल लब्धि आने पर ही होगा। तो चलो काल लब्धि नहीं, वो होनहार है वही होगा। ये सब कुछ है वहां पर, ये इतनी जो निश्चित बातें होती है, और जो कार्य होना है वो होगा, तो वो कौन निश्चित करेगा? तो प्रत्येक द्रव्य में कौन से समय में कौन सी पर्याय कैसी और कब होगी और किस निमित्त से, ये सब कुछ निश्चित है। प्रत्येक द्रव्य में निश्चित है, अभी कहाँ करना है, अपने में कुछ करना है कि पर में करना है, बोलो अपने में करना है कि जो होना है वो होके रहेगा।
कर नहीं सकते,
वो होता ही है ना, सहज ही होता है ना, ये सहजता को ख्याल में लेना है। तो ना पर को करने धरने की चिंता रही और ना अपने में कुछ करने धरने की या पलटने की चिंता रही। चिंता की बात है, व्यग्रता विचार आएंगे, राग होगा, करने का राग भी होगा, दूसरों का हेल्प करना है, बच्चों का करना है, राग उसके ऐसे भाव उत्पन्न हो गए जरूर। परंतु जो कोई पर्याय होगी वो किससे होगी? जिस उस द्रव्य की अपने से होगी। तो मेरे में तो कुछ करूं कि नहीं करूं, करूं या नहीं, होने वाला कुछ और है, हम कुछ पलटाना और चाहते, क्या ऐसा होगा? तो मैं भी जीव द्रव्य हूं, मेरे में भी ये सारे अनादि अनंत पर्यायों का क्रम सुनिश्चित है, उसके योग्य वैसे भाव सहज हो गए ही। देखो इंडिया में रहने वालों को ये धर्म की रुचि नहीं, और आप यहां रहकर भी ये बात अब सुन रहे हो, है ना? तो ऐसे ही होनहार है, ऐसे ही वो ज्ञान की योग्यता है, तो उस समय वैसा कार्य होगा। ये नलिनी ने हमको लिखा था, हमने 4 साल पहले बोला था उनको, हम बिल्कुल विदेश में आने के खिलाफ है, हम नहीं आते, हम आने वाले ही नहीं है। उन्होंने ईमेल पर लिखा था, आपको मालूम है कि भाई कि हमारा उपादान होगा तो ये निमित्त को आना पड़ेगा, ऐसे हमको ईमेल में लिखा था। हाँ नलिनी पे, हाँ देखो। और हमारा कोई विचार नहीं था, बिल्कुल वी आर अगेंस्ट कमिंग दी हियर।
क्वेश्चन है,
हाँ बोलो बोलो।
जो पुरुषार्थ की यहाँ डेफिनेशन है,
हाँ,
वो डिफरेंट है ना?
हाँ,
जो अपने डेली कॉमन सेंस में पुरुषार्थ लगाते हैं वो पुरुषार्थ।
हाँ है। देखो हम जो लौकिक भाषा में क्या है, वर्ड्स तो सेम होते हैं, लौकिक में भी हम यूज करते हैं पुरुषार्थ, हम कोई प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न पूर्वक कोई करके दिखाते हैं, हम उसको पुरुषार्थ कहते हैं, मानते भी हैं। परंतु यहाँ पुरुषार्थ क्या है? तो वीर्य गुण की पर्याय है। उसका कार्य क्या है? तो हर समय में लगती है ना, तो जो कोई पर्याय होती है, अभी जानने रूप पर्याय हो रही है, जानना ये कार्य हो रहा है ना, ये कार्य है ना पर्याय, तो ये कार्य हो रहा है जानने का, ये कौन कर रहा है? जीव द्रव्य स्वयं जानने रूप पर्याय कर रहा है, अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से कर रहा है। कोई दूसरा आकर उसके जानने का कार्य थोड़ा कर देंगे तो हो ही नहीं सकता। अभी हम सोने का उदाहरण दें, सोना है वो बंगड़ी रूप हुआ है, अभी उसकी बंगड़ी बनी है, तो कैसे बनी? तो हम क्या कहेंगे? सुनार ने बनाई। तो बंगड़ी रूप परिणमित होने का उसका अंदर जो कुछ है, वो सोना अपने स्वयं की योग्यता से उस रूप परिणमित हुआ है, अपने काल में हुआ है, और तब सामने निमित्त तो होता ही है। हमें तो बंगड़ी का जो निज शक्ति उसकी पता है, सोने की शक्ति का पता नहीं है। हम कहां देखते हैं? अरे सुनार आया सोनी जो हम कहेंगे, तो सोने ने बनाई, तो हमें निमित्त दिखाई देता है। कथन भी व्यवहार में कथन भी निमित्त से, कथनी होती है निमित्त से, और कार्य होता है उपादान से। तो इसके लिए थोड़ा हाँ बोलिए।
उपादान से नहीं होता है ना, जैसा उसका तो स्वभाव ही है,
हाँ, उसी को उपादान कहते हैं। ये स्वभाव
पुरुषार्थ नहीं है।
हाँ पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ क्या है, सोना स्वयं उस रूप परिणमित हुआ, उसमें बल किसका लगा, सोने का अपना बल लगा, इसको पुरुषार्थ कहते हैं। इन्हें पुद्गल भी स्वयं अपनी योग्यता से, उसकी अपनी योग्यता है उस रूप परिणमने की, उसकी अपनी योग्यता है, तो उस रूप परिणमन करना यही पुरुषार्थ है।
परिणम तो उसका स्वभाव है, तो
स्वभाव ही है वो पुरुषार्थ भी। ये पुरुषार्थ काल लब्धि होनहार और स्वभाव सब स्वभाव में ही है, परंतु स्वभाव तो अनादि अनंत है, परंतु उसी समय उस रूप होना ये उसका स्वभाव, वो भी स्वभाव का ही पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्वभाव।
लेकिन इम्पोर्टेंस जो पुरुषार्थ को हम रियल लाइफ में देते हैं वो
पुरुषार्थ यहाँ नहीं, क्योंकि हमको जो आदत बनी है पुरुषार्थ, ये क्या आलसी बैठा है, थोड़ा कुछ पुरुषार्थ करो, कमाई करो, यानी कमाई करने में भी जो हम पुरुषार्थ समझते हैं, लौकिक में भी कहते हैं ये बहुत पुरुषार्थी जीव है, ऐसा कहते हैं, जो कुछ ठान लेगा वो करके दिखाएगा, इसको हम पुरुषार्थ मानते हैं। परंतु कुछ इच्छा की और वैसा करना, ये पुरुषार्थ की व्याख्या नहीं है, उसकी परिभाषा नहीं है।
तो ये एग्जांपल में सोनी का पुरुषार्थ है जो हम लोग बोलते हैं बगड़ी बनाने में।
हाँ, नहीं, सोनी का पुरुषार्थ किस में है, सोनी का जो योग और उपयोग लगा, योग क्या है, वो जीव द्रव्य ने क्या किया, आत्म प्रदेशों का जो कुछ हलन चलन हुआ, तो उसमें जो पुद्गल है उसके हाथ आदि के शरीर की जो क्रिया है, वो शरीर की पुरुषार्थ, उसका पुरुषार्थ शरीर में हुआ, उस जीव का पुरुषार्थ जीव में हुआ, उसका ज्ञान उसमें लगा, उसकी आइडिया लगी है, और उसके उसने चाहा कि मैं ऐसे ऐसे हाथ की क्रिया करूं, और समझो उस सोनी को वहां पैरालिसिस हुआ तो क्या, चाहता बरोबर है, बहुत स्किलफुल वर्कर है, अभी उसके हाथ की योग्यता नहीं है, पहले तो उसने बहुत गहने बनाए, अभी क्यों नहीं बना रहा है, तो वहां ये शरीर की जड़ की क्रिया उसमें होगी, फिर भी उसने सब चाही करने जैसी, तो सोने में उसने उसमें हो रहा है, और कभी कभी चाहता और है, हाथ की क्रिया भी हो रहा है, बाय चांस कुछ मिस्टेक से अलग ही हो रहा है, हम भी कुछ ड्राइंग करना चाहते हैं और कुछ अलग ही हो जाता है, अक्षर अच्छा निकालना चाहते कि नहीं, हाथ की क्रिया भी होती है और निकलता कुछ और ही है, तो उसकी योग्यता से, ये हरेक द्रव्य की अपनी अपनी योग्यता से अपना अपना कार्य होता है। ये जो तत्व की दृष्टि है, ये जो तत्व का निर्णय है, ये महत्व की बात है।
हाँ, इस एग्जांपल में जो उनका सोने का पुरुषार्थ आपने बताया, वो उसने इच्छा की कि मैं ये करना बनाऊं, वो भाव जो
वो उसका विभाव भाव है ना,
विभाव भाव,
हाँ, वो विभाव का पुरुषार्थ हुआ, उसका
विभाव का पुरुषार्थ हुआ, ऐसा समझ,
यानी वो जो कहते हैं सम्यक पुरुषार्थ है कि मिथ्या पुरुषार्थ है, अभी उसका विभाव रूप परिणमन हो रहा है, उसका भी वो अपने पुरुषार्थ से हो रहा है, क्योंकि पुरुषार्थ हर पर्याय में लगते हैं। अभी सम्यक दर्शन हुआ, वो सुनार को सम्यक दर्शन हुआ, तो उस समय क्या कर रहा था, गहने बना रहा था कि आत्म संबंधी विकल्प में वो लीन था, तो उस समय उसका पुरुषार्थ चल रहा था, ख्याल है ना, वो तत्व निर्णय में जुड़ गया, तत्व विचार में चढ़ गया था, भले हाथ में गहना लिया है और वो तत्व विचार कर रहा है, हो सकता है ना, वो पड़ा रहा हाथ में, हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी ऐसे ही बैठना ऐसे जरूरी है थोड़े, बस वो बैठा, या हम शास्त्र पढ़ रहे, एक वाक्य पढ़ा और हम उसके विचार में चढ़ गए, बैठे बैठे खो गए विचारों में, और समय दर्शन प्राप्त हुआ, तो कौन सा पुरुषार्थ चल रहा था, तत्व विचार का, तत्व विचार से ही सम्यक तो होगा, वो विचार में भी जब वो डिसीजन तक पहुंचता है तो उसका सम्यक तो हो जाता है, तो उसमें निमित्त रूप से कर्मों का उपशम अपने आप हो जाता है। ये देशना वाला निमित्त बहुत पूर्व में चला गया, उस समय कौन सा निमित्त है, कर्म में दर्शन मोहिनी कर्म का उदय चल रहा था, वो अपने आप ठंडा हो गया और उसका उपशम हुआ, ये सब सहज होता है, जीव तो तत्व विचार में इतना लीन हुआ है, ये कर्मों में अपने आप बातें बनती है, फिर भी कौन सी बातें बनती है और बनती ही है, उसका जब हमको पता चलता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, तो तो फिर चिंता करने, अरे हम तो तत्व विचार करेंगे और वो कर्म नहीं हटेंगे तो ख्याल है ना, अरे क्या करें, हमने बहुत पहले तीव्र पाप किए, हमको काहे का क्या होगा, ऐसे लगता है, ऐसी बात नहीं है। अरे सातवें नरक के नारके को भी होता है और वहां असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है, तिर्यंच में असंख्यात है, देवों में असंख्यात है और मनुष्यों में भी देखेंगे, सभी विदेशत्र इधर उधर सबके भूमि के मिलकर चौथे गुणस्थान वाले 700 करोड़ होते हैं मैक्सिमम संख्या उनकी, तो ऐसी बात है ना। तो ये कैसे हो सकता है और होता है तो किसके होता है, उसमें कैसी कैसी बातें, इसमें तो तत्व निर्णय करना। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हमने 5 समवाय संबंधी चर्चा की, निमित्त उपादान संबंधी चर्चा की, तो ये ऐसा ही है, ऐसा जब हमें स्वयं भासित हो तो इसको कहेंगे तत्व निर्णय। उसमें अभी ऐसा नहीं कि उसको हमने बोल दिया और आपने विश्वास किया, आप स्वयं उस पर विचार करेंगे एंड व्हेन यू कम टू द कंक्लूजन योर सेल्फ दैट इज इम्पोर्टेंट। ये मन की आवश्यकता किसमें है, निर्णय में, निर्णय में। हमने ये बातें, ये आपने ऐसी सुनी, हमने ये आगम के द्वारा पढ़ी, क्या ये सही है, हमको क्या लगता है, हमें तो निमित्त से ही कार्य होता हुआ दिखाई देता है और अभी तो आप तो ऐसा बोल रहे, तो उस पर विचार चलेंगे आपके और जब आप सही निर्णय पर पहुंच जाएंगे तो ये और भी बहुत सिद्धांत है, ये तो दीज आर वन ऑफ द सिद्धांत। तो ऐसे सारे जो सिद्धांत होते हैं उसका निर्णय करते करते आत्मा की ऐसी अपूर्व महिमा आती है, तो जीव को ये सारा सहज रूप है, सम्यक दर्शन की पर्याय हो जाती उसके, तो वो पुरुषार्थ कैसे करना कोई बात नहीं, वो जीव द्रव्य स्वयं उस रूप परिणमित हो जाता है, जीव द्रव्य में स्वयं वो सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होती है। वो भी कैसे करेंगे, अभी विचार कैसे करेंगे, आंखें कैसे बंद करेंगे, कोई बात नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहता, ख्याल है ना, क्योंकि हमने वो निर्णय कर लिया है। और वहां भी जब ध्यान होता है उसका भी ध्येय क्या है, कैसा त्रिकाली आत्मा है, ये सब चर्चा आएगी इसकी, तो ये सारा सहज है। हमारी क्या गलती होती है अभिप्राय में, ये सारे निमित्त से कार्य होता है ऐसे मानते हैं, ये हम करेंगे वही होगा ये मानते हैं, जब चाहे तब करेंगे, ये खोटी मान्यता सहित। यदि हम कोई विशिष्ट ध्यान, हम कोई उसको नाम नहीं देंगे, हम ध्यान करना चाहते आत्मा का, क्या होगा, अभिप्राय बदला नहीं है और मात्र किसी क्रिया से या कॉन्सेंट्रेशन, क्या कॉन्सेंट्रेट कहां करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही निमित्त से कार्य होता हुआ मान लिया है, तो हमारा समय दर्शन किसी निमित्त से होगा ऐसा मान लिया है, तो होने वाला नहीं है। इसलिए हम लगता है हमें हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कौन सा ध्यान का, परंतु उसके पहले जो आवश्यक बातें हैं कौन सी, तत्व निर्णय की और तत्व विचार की, तो उसको जाकर कहीं क्लास ज्वाइन नहीं करना पड़ता कि अभी मैं कैसा, अभी तो मैंने तत्व सीखे अभी मैं क्या करूं, ऐसी बात नहीं होती है। और वो कैसी नहीं होती है उसकी चर्चा चलेगी, हम ओवर टाइम हो गए हमारा, सॉरी, तो ये बात क्रम से होगी, हम आगे पढ़ेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।